તારીખ 8/1/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 200 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 244.
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત આંખ 200 વચનાવલી મેં संत का अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया है. 14 वचन लिखे हैं. प्रथम वचन पर कल थोड़ा स्वाध्याय चला था कि जीव स्वयं को भूल गया है. जीव स्वयं को भूल गया है, मैंने अपने मूल स्वरूप को भी भूला हुआ है कि मेरा मूल स्वरूप क्या है. जो भी मेरी वर्तमान अवस्था है और उसके साथ जितने जितने जैसे जैसे संबंध हैं, वैसा मैं अपने आप को अनुभव करता हूं, वो मेरा मूल स्वरूप नहीं है. क्योंकि कुछ काल के पहले ऐसा नहीं था और कुछ काल के बाद वैसा नहीं रहेगा. एक बीच में पीरियोडिकल परिस्थिति है, वो मूल स्वरूप नहीं है. परंतु मूल स्वरूप का अभान होने से या उस विषय में खुद स्वयं बेभान होने से वर्तमान परिस्थिति को ही अपना कायमी स्वरूप मान करके ही जीव संसार में प्रवृत्ति करता है. और इसलिए उनको सत सुख का वियोग है, इसलिए उनको सच्चा सुख का वियोग है, आत्मिक सुख का वियोग है. संसार के जो सुख हैं वो सत सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं है. क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की आकुलता है, बाधा सहित है, अपूर्ण है और अल्पकालीन है. वो सच्चा सुख नहीं है. सच्चा सुख शाश्वत होता है, बाधा रहित होता है और उसमें सर्वांश आकुलता का अभाव होता है. तो ऐसा सुख क्यों नहीं है कि अपना मूल स्वरूप वो अनंत सुख का धाम है, उसमें अनंत सुख का निधान भरा है, उसको वो भूल गया है. इसलिए जो आर्टिफिशियल सुख है, कैसा है, आर्टिफिशियल है, उनको ही वो सच्चा सुख मान करके इसके पीछे उसको जुटाने के लिए वो प्रवृत्ति करता है. यह बात सर्वधर्म सम्मत, यह कथन सर्वधर्म सम्मत है. जितने भी आस्तिक दर्शन है वो सब इस बात का स्वीकार करते हैं. कोई आस्तिक दर्शन संसार सुख को सच्चा सुख नहीं कहते, आध्यात्मिक सुख को ही, आत्मिक सुख को ही सुख कहते हैं. स्वयं को भूल जाने रूप अज्ञान का नाश ज्ञान मिलने से होता है, ऐसा निशंक मानना. ये दूसरा वचन है कि ऐसा स्वयं को भूल जाना यही अज्ञान का स्वरूप है. स्वयं के मूल स्वरूप का ज्ञान का अभाव, उसको कहते हैं अज्ञान. मैंने नहीं, ज्ञान नहीं होना, ज्ञान का अभाव होना. तो अपना स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है उसी को ज्ञान कहते हैं. और ऐसा ज्ञान का नाश आत्मज्ञान होने से, आत्मा का साक्षात्कार होने से प्राप्त होता है, ऐसा अज्ञान का नाश होता है, ऐसा निशंक मानना, क्योंकि वो तो सीधी साधी बात हो गई कि जिस स्वरूप का अज्ञान था उसका ज्ञान हुआ तो अज्ञान का नाश हो गया, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, कोई शंका का अवकाश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। अब कहते हैं ये प्रश्न यहां उठ सकता है कि ऐसा आत्मज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो और अज्ञान का नाश कैसे हो, और अज्ञान का नाश हो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा प्रश्न यहां हो सकता है। तो उसका उत्तर ही स्वयं दिया है, पद्धति ऐसी कृपा देव की है कि जहां जैसा प्रश्न उठे उसका उत्तर बिना पूछे ही लिख दिया है, उतने वो समर्थ थे। यहाँ ऐसा ही लिखना चाहिए क्योंकि ऐसा प्रश्न उठने का यहाँ संभव है। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, यह स्वाभाविक रूप से समझ में आता है, फिर भी जीव लोक लज्जा आदि कारणों से अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ता, यही अनंतानुबंधी कषाय का मूल है। ये तीसरा वचन है। क्या कहा कि ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति जो आत्मज्ञानी है उसके पास से होनी चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से समझ में आता है, उसमें कोई विशेष बुद्धिमानी की जरूर नहीं है। जैसे हमें शरीर में कहीं भी दर्द होता है, हम नहीं जानते कि ये दर्द का रोग क्या है, क्यों हुआ है और कैसे मिटेगा, वो कुछ हम जानते नहीं है। और जो गवार है उसको बहुत कम बुद्धि है, वो भी दर्द होने से डॉक्टर के पास जाएगा, वैद्य के पास जाएगा, क्योंकि उसी विषय में मेडिकल साइंस में वो इस विषय के एक्सपर्ट होते हैं, तजज्ञ होते हैं। तो जिस विषय के जो तजज्ञ है उसी के पास जाना चाहिए, वो बात तो गवार को भी समझ में आती है। हम तो विशेष बुद्धिमान जीव हैं, वैसे गवार नहीं है, और कोई गवार कहे तो हम उस बात का स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं है, बुद्धि लड़ाते हैं अपने कारोबार में, लड़ाते कि नहीं लड़ाते। तो ये तो स्वाभाविक समझ में आए ऐसी बात है, फिर भी हम आत्मज्ञानी के पास नहीं जाते हैं और अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ते हैं लोक लज्जा आदि कारण से। लोग क्या कहेंगे, आप इधर जाते हैं, हमारे संप्रदाय में महाराज है, त्यागी है, शास्त्र भी पढ़ते हैं, शास्त्र के ज्ञानी भी हैं, लेकिन आत्मज्ञानी है कि नहीं उसका पता नहीं है। मनुष्य किसी न किसी संप्रदाय में जन्म लेता है, चार गति में सांप्रदायिक व्यवस्था एक मनुष्य गति में ही है, पशु पक्षी त्रिज गति में नहीं है। देवलोक में भी कोई संप्रदाय नहीं, नरक लोक में भी कोई संप्रदाय नहीं है। मनुष्य है वो किसी न किसी धार्मिक संप्रदाय के कुल में जन्म लेता है, जिस संप्रदाय में वो जन्म लेता है उसी अनुसार उसका पूर्व कर्म यानी पूर्व के भाव थे, पूर्व कर्म हुए मध्य मतलब पूर्व के भाव थे, उस अभिप्राय में उसको वो गति वो कुल मिला है। जैनियों को जैन कुल मिला, इसका कारण उसको उसने कहीं न कहीं ओग संज्ञा से भी जैन धर्म की अनुमोदना की है, तो जैन कुल मिला है। और अन्य मतियों ने जिस जिस संप्रदाय में उसने जन्म लिया ऐसी बुद्धि उसकी पहले हुई थी, उसका वैसा अभिप्राय था, उस प्रकार की बात उन्होंने सम्मत किया था, ऐसी बात थी, तो उसने उसी संप्रदाय में प्रारब्ध का योग हुआ और वहां जन्म लिया। इस तरह से कर्मानुसारिणी मति और गति का संबंध है। अब जो भी संप्रदाय में जीव जन्म लेता है वो इस बात को छोड़ करके, अपने संप्रदाय को छोड़ करके या संप्रदाय की रुचि रिवाज मान्यता श्रद्धा छोड़ करके और जगह वो जाने में उनको दिक्कत होती है, कठिनाई पड़ती है, क्योंकि इनके संप्रदाय वाले उनको रोकते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, हमारे संप्रदाय में भी लोग त्यागी है, ज्ञानी है, सब कुछ है, हमारे संप्रदाय में कौन सी कमी है, तो तुम इसको छोड़ करके और जगह जाते हो और संप्रदाय में जो लोग हैं उनमें सगे संबंधी वगैरह होते हैं, तो वो संबंध कहीं टूट नहीं जाए, हमारे संबंध में कोई व्यावहारिक संबंध है, कोई व्यापारिक संबंध होता है, कुछ न कुछ समझ समाज के साथ संबंध तो होता ही है, क्योंकि जान पहचान में ये सब बनता है, तो उसमें कोई दरार नहीं पड़े, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो जाए, क्लेश नहीं हो जाए, और हमारे संबंध बिगड़े नहीं, कई प्रकार की जो हिम्मत हारने की परिस्थिति माने भय उत्पन्न होता है, इसलिए। और दूसरा ये कि हमारे जो समाज संप्रदाय है उसमें हमारी इज्जत है, दूसरे लोग तो हमें जानते भी नहीं, जो जान पहचान वाले वही जानते हैं, हमारी इज्जत आबरू तो कीर्ति इसमें है, उसका क्या, हमारी कीमत चली जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, तो इस डर से भी वो लोक लज्जा होती है, तो उन लोगों की शर्म रखना चाहिए, जैसा बोले तो उसकी मानना चाहिए, ऐसा करके जीव आत्मज्ञानी नहीं होते हुए ऐसे अज्ञानी जनों के संग को नहीं छोड़ता, संगति को नहीं छोड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज्ञानी का भी संग करे और अज्ञानी का भी करे, ज्ञानी का भी सुने और जो ज्ञानी नहीं है संप्रदाय में उसको भी सुनने को चले जाए, क्यों, तो लोग लज्जा आड़े आती है, लोग किचपिच किचपिच करके माथा खराब कर दें, चलो ना चले जाओ, उन्हें अपना क्या जाता है, इस तरह से भी लोग जाते हैं। ठीक है, तो हम जो ग्रहण नहीं करने लायक है वो नहीं करेंगे, और करने लायक होंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा परिश्रम उठाना पड़े नहीं ग्रहण करने लायक को नहीं ग्रहण करने का, ऐसा क्यों करना, कि लोक लज्जा आदि कारण से अज्ञानी का आश्रय जीव नहीं छोड़ता, और ये सामान्य अपराध नहीं, क्या लिखा है कृपालु देव ने, यही अनंतानुबंधी कषाय का मूल है, जो अनंतानुबंधी कषाय जीव को चार गति में परिभ्रमण का कारण है। इसका मूल क्या है, कि ज्ञानी का आश्रय नहीं करना, अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ना, ये जो परिस्थिति रही है वो जीव को अनंतानुबुद्धि कषाय को वो पनपेगा। मूल है ना, मूल से तो पनपता है वृक्ष और उन्हीं चार गति में परिभ्रमण कराएगा।
ऐसे जीन मत में आए हम, सम पूर्व कुछ अनुबोधन के कारण से जीन में आ गए और जीन मत के देव शास्त्री गुरु को हम मानते हैं, फिर मेरा क्या दोष है?
लेकिन दूसरा का भी मानते हो, कुदेव को भी मानने लग जाते हैं।
कुदेव को नहीं माने खाली जीन।
हाँ, फिर आप अज्ञानी को माया का आश्रय करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देवगुरु शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अज्ञानी का आश्रय करो,
ये परीक्षा करना जरूरी है।
तो देवगुरु शास्त्र तो ये कहता है कि ज्ञानी का आश्रय करो, ज्ञानी का संग करो, तो हमको उसकी आज्ञा में चलना है। फिर भी लोक लज्जावश हम नहीं छोड़ सकते, तो हमारा चार गति का जो परिभ्रमण है जिसमें अनंत जन्म का दुख, अनंत मरण का दुख, अनंत प्रकार के रोग का, शरीर की पीड़ा का, रोग के सिवा एक्सीडेंट से भी पीड़ा होती है और अनेक प्रकार के टेंशन के दुख, तनाव के दुख होते रहते हैं, ये भयंकर परिभ्रमण है। वो परिभ्रमण की भयंकरता जब तक भासित नहीं होती है, लगती नहीं है, दिखने में नहीं आती, तब तक जीव इसको छोड़ने का दृढ़ निर्धार नहीं कर सकता। अगर वो दुख स्पष्ट रूप से समझ में आए हैं तो किसी भी कीमत पे उसको छोड़ने का विचार आए बिना नहीं रहेगा कि हमको ऐसा दुख किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए, एट एनी कॉस्ट हमको ये मिटाना है, ऐसा निर्धार किए बिना वो नहीं रहेगा। क्यों? कि ये अनंत जन्म मरण का प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इससे बड़ी समस्या कहीं विश्व में है ही नहीं। इसलिए जो विचारशील है, बुद्धिमान है, वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम को ही मिटाएगा, छोटे मोटे प्रॉब्लम को छोड़ करके। छोटी मोटी बात में रुकना और बड़ा नुकसान को आने देना, होने देना, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। एक व्यापारी का, रुई के व्यापारी का दृष्टांत देते थे गुरुदेव। एक रुई का व्यापारी था, गामड़े में से रुई खरीद करके खेडूत लोगों से वो मिल में, जिन में वो बेचते थे, तो उनका ध्यान कहाँ रहता था कि इसका जो बारदाना होता है वहां रुई थोड़ा चौंट जाता है और बारदाना मुफ्त में देना पड़ता है और रुई का ही पैसा मिलता है जितना वेट होता है उसका। तो अगर रुई चौंटता है 100-200 ग्राम उसमें छोटा मोटा पुमड़ा पड़े देने के वजह से, तो उसका बारदाना का वेट भी बढ़ जाता है, जो एक किलो का है वो 1.25 किलो का हो जाता है, तो उतना पैसा भी कम मिलता है और बाद मुफ्त में जाती है, उतना रुई भी मुफ्त में जाता है और पैसा भी कट जाता है, दो डबल नुकसान होता है। तो उसका ध्यान वहां रहता है, वो हमेशा क्या करता है कि वो खाली होता है तो उसको इकट्ठा करने में लग जाता है, वो अपना ध्यान रहता है कि उसका रुई के भाव में चढ़ाव उतार रहता है, उस पर ध्यान नहीं जाता। व्यापारी का ध्यान तो बाजार में होना चाहिए कि भाव कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, हम अच्छे से अच्छे भाव में बेचें, क्योंकि उसमें बड़ा नफा नुकसान तो वहां है कि 200 ग्राम रुई में क्या रखा है, कितना नुकसान आएगा। लेकिन ये पुमड़ा विणवामा रही जाए छे, भावनो नुकसान मोटू खाए छे, तो लोग दूसरे व्यापारी क्या कहेंगे कि मूर्ख है मूर्ख, ज्ञान कहाँ देना चाहिए वो उसको भान
नहीं,
नहीं है, तो दिवाला निकालेगा, क्या होगा दिवाला निकालेगा। ऐसे जीव परिभ्रमण की समस्या को नहीं समझे और संसार की छोटी मोटी अनुकूलता में ही अपना समय और शक्ति का खर्च कर दे तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, और इसके कारण से उनको चार गति के दुख भोगने पड़ेंगे। ये तो कुदरत की व्यवस्था है। तो ये परिभ्रमण का मूल क्या है? अनंतानुबंधि कषाय। और इसका बीज कह रहा है कि आत्मज्ञानी की खोज नहीं करके संप्रदाय के अज्ञानी गुरुओं के आश्रय में रह जाना। देखो कितनी स्पष्ट बात किया है, वहां भी कुछ है, वो लोग त्यागी तो है, तप तो करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पंचमाव्रत की प्रतिज्ञा लिया है, तो उसका भी कोई कीमत तो होनी चाहिए। और संज्ञा में उसकी बुद्धि कर्मानुसारिणी है, जिस कर्म के अनुसरण करके जो संप्रदाय में आया है वही लग जाएगा। स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करेगा कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है, वो विचार नहीं करता। बाकी आत्मज्ञान की बात सभी आस्तिक दर्शन है, छह दर्शन में आत्मज्ञान की आत्मसुख की चर्चा चली है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो तो जैन में से ही निकली है सब, तो चली है बात तो प्रसिद्ध है। पर सामान्य बुद्धि से ये बात समझ में आनी चाहिए कि आत्मज्ञानी से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी और जगह से नहीं हो पाएगी।
ऐसे ये सब सुन के भी जीव को आकर्षण दूसरे जगह का क्यों नहीं मिलता
है?
इतना सब कुछ सुन करके भी समझ करके भी जीव का आकर्षण दूसरी ओर से क्यों नहीं होता?
आकर्षण
अन्य जगह से क्यों नहीं हटता है?
लोक संज्ञा के कारण से और लोक लज्जा आदि कारण से। लोक लज्जा में कुटुंब प्रतिबंध भी आता है, लोक संज्ञा तो आती ही है, लोक समाज प्रतिबंध तो होता ही है, कुटुंब प्रतिबंध भी आएगा। कुटुंब में भी दूसरे लोग ऐसा कहेंगे कि आप अपने अपने संप्रदाय को छोड़ करके इधर उधर क्यों जाते हो, वहां भी तो सब कुछ है, और हमारे यहाँ कौन सी कमी है वो बात वो शुरू शुरू में समझा नहीं सकता। वो जो चर्चा है उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता क्योंकि पूरी समझ नहीं है इस विषय की। तो वैसे ही अमूल्य मनुष्य भव, जिस मनुष्य भव में परिभ्रमण का नाश का कारण हम प्राप्त कर सकते हैं, वो अमूल्य मनुष्य भव खो देना का प्रसंग आता है, ये बात बन जाती है। प्रारब्धवशात संयोग हो जाएगा, लेकिन उस संयोग होने में उनकी बात को मानना, उनको धार्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना, वो इसका आश्रय भाव है। उसका बात मानना, गुरु समझ करके बात मानना, वो आश्रय भाव है, और वो आश्रय भाव से चार गति का संसार होने वाला है, ऐसा कहते हैं। विवेक करेगा तो नहीं आएगा, यहाँ विवेक की जरूरत है। देखो उसके पास आत्मज्ञान नहीं है तो ठीक है, संयोग वसात मिलना हुआ, लेकिन हमको इसकी बात में श्रद्धा विश्वास नहीं है, ऐसा विवेक हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। संयोग होने से डरना नहीं है, लेकिन विवेक को मुख्य करना है, वो बात है। तो जीव उसका आश्रय में या आज्ञा में नहीं रहेगा और आगे जाके संप्रदाय को छोड़ देगा, आगे जाके कहलाने वाला अपना संप्रदाय उसको छोड़ देगा, क्योंकि वो सही अपना संप्रदाय नहीं है, वो तो कहलाने वाला है। क्यों? कि आज इधर जन्मा कल उधर जन्मेगा, संप्रदाय तो बदलता रहेगा। जीव कभी मुसलमान भी हुआ है, कभी क्रिश्चियन भी हुआ है, कभी जैन हुआ है, कभी विष्णु हुआ है, कोई संप्रदाय बाकी नहीं रहा। अज्ञान के अनंत प्रकार है, सभी प्रकार का भाव कर चुका है और सभी प्रकार का फल भी भोग चुका है, ये सब हो चुका है। अब तो विवेक, परम विवेक करने की बात है, और विवेक से ज्ञानी का आश्रय में जाता है तो उसका परिभ्रमण छूट जाता है, क्योंकि एक आत्मज्ञान ही संसार के सर्व दुख, सर्व क्लेश और सभी प्रकार के अज्ञान का नाश का कारण है। इसलिए ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञानी के पास ही जाना चाहिए। पर हम ऐसे ही करते हैं कि हार्ट पेन होता है तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं जाते, और हड्डी टूट जाती है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। वो तो स्वाभाविक समझ में आए ऐसी बात है, उसमें कौन सी नहीं समझने जैसी कौन सी बात है, नहीं समझ में आवे ऐसी कौन सी बात है, ऐसे तो कोई बात दिखती नहीं है इसमें। तो अल्प बुद्धिमान गवार होते हैं उनको भी ऐसा तो समझ में आता है, तो हम तो रहे बुद्धिशाली।
ज्ञानी है या नहीं है इस बात का निश्चय करना जरूरी है।
वो तो जरूरी है, अवश्य जरूरी है। निश्चय करना क्या? परीक्षा करके निश्चय करना, ऐसी बात है। ऐसे नहीं मानना, कोई कहे इसका नहीं मानना, क्योंकि हमको किसी का ज्ञान से हमको काम नहीं करना है, अपना ज्ञान से काम करना है। वो ज्ञानी को अज्ञानी कहेगा, अज्ञानी को ज्ञानी कहेगा, कोई कह कुछ भी कहे, हम तो हमारे ज्ञान से सब निश्चय करना है, पर वही हमको काम में आने वाला है, दूसरे का ज्ञान हमको काम में आने वाला नहीं है।
जैसे परीक्षा करने का जो योग्यता है वो जब तक परिभ्रमण का वेदना नहीं आएगा उसके पहले ऐसा योग्यता प्राप्त नहीं होगा।
तो सबसे पहले तो वो बात है कि परिभ्रमण से छूटना है कि नहीं छूटना है। तो परिभ्रमण से छुड़ाने की बात जो कहेगा, साइंटिफिक प्रोसेस है ये, तो बात समझ में आई जाएगी। जिसको छूटना है उनको वो बात समझ में आई जाएगी। बाकी तो सब लोग कहेंगे कि इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, और ऐसा पूजा करो, भक्ति करो, दान करो, वो करो, वो करो, यात्रा करो, तप करो, तो आपको पुण्य बंध मिलेगा और पुण्य बंध में आपको संसार के अच्छे अच्छे सुख मिलेंगे। फिर इस सिक्के ऐसे सुख के पीछे कितना बड़ा दुख की खानी है वो बात तो कहने वाले भी जानते नहीं, तो सुनने वाले तो जानेंगे भी कहाँ से। मानो के देव का देवलोक हो गया, देवलोक का देव हो गया, फिर एकेंद्र में जाएगा वो बात वो लोग तो जानते नहीं। ज्ञानी कहेंगे कि ऐसा पुण्य का कोई मूल्य आत्मकल्याण के मार्ग में है ही नहीं, वो बात कौन कहेगा? ज्ञानी कहेगा। अज्ञानी पुण्य का उपार्जन कराने की बात करेगा, ज्ञानी संसार का परिभ्रमण नाश कराने की बात करेगा। ये बात से समझ में आ जाएगा कौन क्या बात करता है, वो बात समझ में आएगी। जिसकी दुकान में जो माल है वही बेचेगा ना। सब्जी तरकारी वाला वेजिटेबल मार्केट में हीरों का हार कहां से मिलेगा? सके, इसकी दुकान में है ही नहीं। चोरों की दुकान में ये होता है, वो वेजिटेबल मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है, वहां तो सब्जी तरकारी मिलेगी।
तो रुपया लेके जाएगा उसको मिलेगा, जिसकी पात्रता होगी और रुपया लेके जाएगा उसको ही।
तो जो जिसको उसको हीरे का हार खरीदना है उसको इतने पैसे लेके जाना होगा, और सब्जी तरकारी तो 25-50 रुपया में भी मिल जाएगी। कोई हीरे का हार 25-50 रुपये में
नहीं
मिलता, इसलिए इसके लिए योग्यता चाहिए। योग्यता जरूरत महसूस होने से प्राप्त होती है। ज्ञान योग्यता बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं, सिद्धांत वो है कि योग्यता बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, और योग्यता आवश्यकता बिना प्राप्त नहीं होती, आवश्यकता होनी चाहिए। वरना धर्म तो करेगा मनुष्य है, इसलिए किसी न किसी प्रकार से, लेकिन अज्ञानी का आश्रय छोड़ेगा नहीं, और वही अनंतानुमंदी कषाय जो परिभ्रमण का कारण है, इसका मूल तो वही है।
और वो भी ज्ञानी की प्रत्यक्षता मौजूद है तब तक काम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वही ग्रुप बाद में संप्रदाय में बदल जाता है। ज्ञानी की गैर हाजिरी हुई नहीं और वो संप्रदाय हो गया,
उस ज्ञानी के नाम से संप्रदाय बन जाएगा, ये बात बनने वाली। हम कांजी स्वामी वाले, हम श्रीमद राजचंद्र वाले, ये वाले वाले हो जाएगा
जी।
तो बोले कि हम स्थानक वासी वाले, तो हम मूर्ति पूजक वाले, हम दिगंबर वाले, वो सब वाले वाले हो जाएगा। गाने कहते हैं कि मैं मत में नहीं, गच्छ में नहीं, वाड़ा में नहीं, मैं संप्रदाय में नहीं हूँ, मैं आत्मा में हूँ। मेरा मार्ग तो मेरा मार्ग मैंने जिन मार्ग तो आत्म कल्याण करने का सिर्फ है, उसमें कोई संप्रदाय का बंधन
नहीं
होता। और भगवान महावीर स्वामी ने वो बात सिद्ध कर दी कि देखो मैं संप्रदाय में नहीं मानता, मैं तो वेदांतियों के गुरु जो इंद्रभूति था उसको गौतम स्वामी बना करके उसको गणधर बनाया। जैनियों की लाइन लगी हुई थी, समोसरण में लाखों जैनी बैठे हुए थे महावीर स्वामी के संप्रदाय में, साधु भी इतने थे, साधवियां थी, श्रावक थे, किसी को गणधर पद नहीं दिया, वो सीनियोरिटी के हिसाब से नहीं मिलता, वो तो मेरिट्स के हिसाब से मिलता है, मेरिट्स में काम उसमें काम आता है। तो भगवान के ज्ञान में देखा वो सबसे बड़ा पात्र है, वो आएगा तो काम होगा, वो हमारा उपदेश चलेगा, वो नहीं आएगा तो हमारा उपदेश
नहीं
चलेगा। 66 दिन तक वाणी खुली नहीं भगवान की, फिर इंद्र को विकल्प आया, अवधि ज्ञान में देखा कि है क्या बात, ऐसा कभी बनता नहीं कि तीर्थंकर समोसरण में बैठे और उसकी वाणी चले ही नहीं। एक दिन में 4 दफे चलती है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ऐसे ऐसे 65-66 दिन चले गए। फिर उनको विकल्प उठा के कुछ बात कुछ गंभीर है उसमें, तो देख लिया कि समोसरण में कोई इसकी वाणी की जो कोटि है, कक्षा है, उसके झेलने के लायक कोई है ही नहीं, इधर कोई इतनी पात्रता वाले नहीं दिखे जिसको गणधर पद मिले। फिर उन्होंने उपयोग लंबाया तो देखा, अरे वो आदमी तो हजारों शिष्य का गुरु बन के बैठा है, आएगा कैसा इधर। अज्ञान दशा में जो गुरु पद को प्राप्त होता है वो मान के घोड़े से उतरता नहीं, सब उनको मान सम्मान करता है, गुरु मान करके युक्ति बनाया है, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, कृपया इसका समाधान कर लीजिए। प्रश्न ऐसा रखा वो समाधान नहीं कर पाए, बस बोले के हम तुम्हारे जैसे मामूली आदमी से बात नहीं करता है, आजकल के डॉक्टर वही करते हैं, पूछते हैं तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, हम जो लिखते हैं हम जो मरमर करते हैं बराबर करते हैं, दखल मत करो तुम, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि उसमें उसका अधूरा ज्ञान है, उसकी पोल खुल जाती है, वो देंगे नहीं कोई, वैसे उनका ज्ञान अधूरा था, तुम तेरे से बात नहीं करेंगे, तुम्हारा गुरु कौन है उनको बुलाओ, इनसे इनसे चर्चा करेंगे, तो महाराज हमारे गुरु तो यहाँ नहीं आ सकते, आप पधारो तो हम बातचीत का प्रसंग बिठा देंगे, हमको शंका तो हो गई थी कि कोई इसका गुरु कोई समर्थ होगा, जाना तो चाहिए, पात्रता थी ना, भाव ऐसे ही चले उनके, तो ले आए समस्रण में, बस बात खत्म हो गई, तीर्थंकर देव का अतिशय होता है, प्रभाव होता है, सब सारे इसके भीतर की दुनिया पलट गई, सब परिणाम पलटने लगे, ऐसा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात किया है, जीव मनुष्य है वो इस प्रकार की भूल प्राय करता है, अपने संप्रदाय से निकल नहीं सकता और संसार के परिभ्रमण से छूट भी नहीं सकता। चौथा, जो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करता है उसे ज्ञानी की इच्छा अनुसार चलना चाहिए, ऐसा जिनागम आदि सभी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार चलता हुआ जीव अनादि काल से भटक रहा है, ये चौथा घोषणामृत है। क्या कहते हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति जिसको करना है, उसकी आवश्यकता महसूस हुई है, उसको ज्ञानी की इच्छा मैंने ज्ञानी की आज्ञा उसी के अनुसार चलना चाहिए। ऐसी बात सभी शास्त्रों ने कही है, आज्ञाकारिता के बिना उसका उपदेश की असर नहीं पहुंचती, आज्ञाकारिता में आना चाहिए, इच्छा का यह अर्थ होता है आज्ञा, उसकी जो आज्ञा है वैसा ही हमको चलना चाहिए, चलना चाहिए मैंने अनुसरण करना चाहिए, अमलीकरण करना चाहिए, वो कहे ऐसा करो तो वैसा, वो उसका एक हद है कि दिन को 12 बजे गर्मी के दिनों में वो कहे कि ये तो अमावस्या की रात है और ये सूर्य नहीं है तुमको दिखता है, वो चंद्र भी नहीं है, ये तो अंधेरी रात है अमावस्या की, क्योंकि अमावस्या की रात में सूर्य चंद्र एक भी आकाश में नहीं होते, स्वीकार करने की तैयारी होनी चाहिए, ऐसी बात है, थोड़ी परीक्षा करके नक्की करना, नक्की करने के बाद विकल्प मत उठाना, उसकी आज्ञा के सामने विकल्प मत उठाना, वो बात है, सम्मत करने के पहले पूरी परीक्षा करना, फिर पक्का हो गया आत्मज्ञान है और परिभ्रमण से छूटने की यहाँ ही परिस्थिति है, तो फिर इसकी जो भी आज्ञा है वो शिरोध्यान करना है, क्योंकि इसमें भी कोई रहस्य होता है, जो बात सामान्य बुद्धि में नहीं बैठती वैसी बात कोई विशेष बुद्धिमान करता है तो इसके पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। इतना मूल्यांकन शुरू से ही होना चाहिए। ऐसी अगर समझ नहीं होगी तो कभी न कभी शंका पड़े बिना रहेगा नहीं, और शंका होगी तो भक्ति चली जाएगी, आज्ञाकारिता चली जाएगी। अपनी इच्छा अनुसार चलता हुआ जीव अनादिकाल से भटक रहा है। धर्म साधन वो कहे वैसा करना है। इसके आज्ञा का मतलब क्या है कि धर्म साधन करने का विषय इसके पास है, और तो कोई बात है ही नहीं। संसार के लेन देन की तो कोई बात उसमें है ही नहीं, जो बात है वो तो धर्म साधन कैसे किया जाए, वो कहे वैसा करना, अपनी इच्छा अनुसार नहीं करना है। अपनी इच्छा अनुसार करते हुए तो परिभ्रमण चालू रहा है, और उसी को ही ज्ञानियों ने स्वच्छंद बोला है। स्वच्छंद से नहीं करना है, स्वच्छंद मैंने अपनी मनमानी करना, अपनी इच्छा अनुसार धर्म साधन करना, ये स्वच्छंद परिभ्रमण का कारण है। परिभ्रमण के दो कारण बताए, एक स्वच्छंद और एक प्रतिबंध। समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, शरीर प्रतिबंध और संकल्प विकल्प प्रतिबंध, ये सब परिभ्रमण के कारण है। और स्वच्छंद तो सबसे बड़ा दोष है। कहीं बड़े बड़े दोष का गर्भ पड़ा है स्वच्छंद में, तो सब बड़े बड़े दोष जन्म लेंगे स्वच्छंद के कारण से। तो स्वच्छंद से तो दूर रहना है। अपनी मति अनुसार धर्म साधन करना, उसमें स्वच्छंद जैसा बड़ा दोष है ये कम लोग जानते हैं। तो वैसे ही समझते कि अपन पाप थोड़ी करते हैं, धर्म साधन करते हैं, व्रत करते हैं, त्याग करते हैं, तप करते हैं, दयादान करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, उसमें क्या बुरा है। तो उसमें स्वच्छंद दिखाई नहीं देता कि इतना महान दोष है, सबसे बड़ा दोष है वो परिभ्रमण के कारण में। और ज्ञानियों ने इसकी मना की है। ऐसे जो वैद्य लोग हैं ऐसे जानते हैं कि तू इस प्रकार की मिठाई खाने के बाद पानी मत पीना। हमारे कजिन ब्रदर है, उसको टाइफाइड हुआ था। तो पहले के जमाने में एलोपैथी का उतना छोटे गांव में तो होता नहीं। हमारे वहां एक वैद्य आता थे, 80 साल के बुढ़ा था, बहुत जानकार आदमी, नाड़ी वैद्य था। 80 साल की उम्र में पूरे दांत से वो गन्ना खाते थे, चबाते थे बराबर। और हमारे यहाँ आते थे, हमारे खाना नहीं खाते थे, अपने हाथ से रसोई पका करके खाते थे। तो टाइफाइड हुआ था, वसंत थे नारायणपुर, इन टाइफाइड थे तो नारायणपुर में ताव उतरता नहीं था, तो कंटिन्यू ताव ज्यादा रहता है, तो उसको टाइफाइड बोलते हैं, मुदतिया ताव बोलते हैं, मुदत से उतरता है। बोला देखो भाई क्या है, तो उसने नार देख करके बोला कि 15 दिन पहला इस लड़के ने सुखड़ी खाया है। क्या सुखड़ी खाया है, उस पर पानी पिया है, और फिर वो बहुत दौड़ा है। क्या है, दौड़ लगाई है, वो सुखड़ी इसके हाथ में चोट गई है, पकी नहीं, पक करके मल होकर के निकल जाने चाहिए, वो पका नहीं है। वो मल पका नहीं है तो गर्मी से ही पकेगा, तो इसके लिए बुखार आना जरूरी है, बुखार के बिना वो पकेगी नहीं। अगर उसको बुखार उतारेंगे तो बात तो खराब होगी, इसलिए उसको 21 दिन तक ये बुखार रहने वाला है। 21 दिन के बाद अपने आप वो बुखार चले जाएगा, उसका मल निकल जाएगा और वो चलने लगेगा। उसको खाने पीने का नहीं देना है, मूंग का पानी वगैरह जो भी बताया वो देने का है। तो सुनने वालों ने सोचा हाँ बात तो ठीक है, 15 दिन पहले अपने यहाँ सुखड़ी बनी है और घर में सुखड़ी बनती है तो बच्चे लोग तो खाएंगे ही खाएंगे, तब मिठाई बनाते हैं तो बच्चे लोग तो खाएंगे ही खाएंगे, तो खाइए वो बात भी जरूर है, और बच्चे लोग तो दौड़ते फिरते हैं तो वो बात भी बिल्कुल संभवित है। तो ऐसे है वो नाड़ के धबकार, ऐसे पेट में क्या चीज पड़ी है वो बताते हैं, पॉइंट क्या है, नाड़ी के धबकार ऐसे पेट में क्या चीज पड़ी है वो बुद्ध दिखा सकते हैं, ऐसे तजग्न है। वैसे ये ज्ञानी जो है वो जो सामान्य प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति है, संप्रदाय अनुसार लोग करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण वो जिसके जहां जो चलता है वो, उसमें क्या खराबी है और कैसा रोग होता है परिभ्रमण का, वो क्या नहीं बताते हैं। सामान्य बुद्धि से उसमें कोई दोष नजर नहीं आता कि इसका कारण ये परिभ्रमण का कारण हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी बताते हैं कि देखो तुम धर्म साधन करते हैं अपनी मति कल्पना से, ये तुम्हारा स्वच्छंद है और वही परिभ्रमण तुमको कराएगा, तुमको उसमें कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन स्वच्छंद इतना कोई बड़ा दोष है ही नहीं संसार, ऐसा हो जाता है।
धर्म साधन छोड़ी ने
संसारिक कार्यों में स्वच्छंद तीव्र विषय कषाय परिणाम करवा स्वच्छंद से हिचकिचाट बिना तीव्र रस से परिणाम हो गए वो स्वच्छंद है। और धार्मिक क्षेत्र में ज्ञानी की आज्ञा अनुसार नहीं करके अपनी मनमानी करना संप्रदाय बुद्धि से तो स्वच्छंद है, दोनों स्वच्छंद परिभ्रमण के कारण ऐसे। तो ये स्वच्छंद का प्रकरण बहुत बड़ा है और इस विषय में अपने प्रयोजन सिद्धि में थोड़ी बातें ली है, और दर्शन का और अनंत अनुबंधी कषाय का भी मुख्य तौर से वो बंधन कराता है, इसलिए इस विषय में पूरी छानबीन करके स्वच्छंद को छोड़ना चाहिए। और पूरी छानबीन करने का मौका नहीं मिले तो ज्ञानी की आज्ञा में चलना है वो संक्षेप मेरे आ जाए तो वो जीव सेफ गार्ड हो जाता है।
शॉर्टकट
है इसका, दर्शन वो कम करने का, पात्रता पाने का भी शॉर्टकट है, इसलिए सभी ज्ञानियों ने अपने मुमुक्षु की भूमिका में यही रास्ता ग्रहण किया है, सबों ने ये रास्ता ग्रहण किया है, यही कारण है इसका। ऐसे चार वचनामृत हुआ है, आगे के वचनामृत कल के स्वाध्याय में लेंगे, समय हुआ है।